बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामुअलैकुम। अंदाज़े जहाँ के साथ मोहम्मद मेहदी शराफ़त हाज़िर है और आज अंदाज़े जहाँ में आलमी सियासत में सहाफ़त के किरदार के ज़ेरे उन्वान गुफ्तगू होगी, तो लीजिए मुलाहिज़ा फरमाइए अंदाज़े जहाँ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, तेहरान में न्यूज़ एजेंसियों और अखबारात व जराइद की 17वीं बैन अल-अक़वामी नुमाइश जो 25 अक्टूबर को शुरू हुई थी, जारी है और कल इसका इख्तिताम होगा। आलमी सियासत में सहाफत का किरदार, जैसा कि आप जानते हैं, आज सहाफत इस मकाम पर पहुंच गई है कि न सिर्फ ये कि वो सियासत को रुख देती है, बल्कि बाज़ औक़ात ऐसा भी नज़र आता है कि सहाफ़ती हलके सियासत का तायुन भी करते हैं और बाज़ औक़ात वो मुल्कों में हुकूमतों को मजबूर कर देते हैं अपनी बात मनवाने पर। मुल्क के अलावा आलमी सतह पर अगर हम सहाफ़त का जायज़ा लें तो आलमी सतह पर आलमी सहाफत पर आज आलमी मीडिया पर, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इस पर सहूनी और अमरीकी साम्राज्य हलकों का तसल्लुत है और वो पूरी दुनिया में अमरीकी और मगरबी न्यूज़ एजेंसियां जो रिपोर्ट ख़ास जाविये से ख़ास हदफ के साथ तैयार करके वो इरसाल करती हैं पूरी दुनिया में, वही रिपोर्टें अखबारात और जराइद के ज़रिए आवाम तक पहुँचती हैं। इस सिलसिले में तीसरी दुनिया, ख़ास तौर पर इस्लामी ममालिक के अखबारात पर भी अगर आप नज़र डालें तो बाज़ दानिस्ता या बाज़ नादानिस्ता तौर पर मगरबी न्यूज़ एजेंसियों और मगरबी ज़राए इब्लाग की फराहम करदा रिपोर्टें अवाम तक पहुँचाते हैं और उसका तहलील व तज़िया बहुत कम करते हैं। बाज़ तज़िया निगार इस तरफ तवज्जो देते हैं, लेकिन अक्सर जो अखबारात हैं वो इस बारीकी को नज़रअंदाज कर देते हैं कि मगरबी मीडिया और मगरबी न्यूज़ एजेंसियां ख़ास हदफ और ख़ास जाविये के साथ रिपोर्टें तैयार करती हैं। इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है बर्रे सगीर हिंदू पाकिस्तान के दो सीनियर और मुमताज़ सहाफ़ियों को, शकील शमसी साहब, जिनका बहुत लंबा तजुर्बा है, बहुत तवील तजुर्बा है टीवी जर्नलिज्म में, और इसी के साथ पाकिस्तान के मुमताज़ और मशहूर रोज़नामा जसारत के मुदीर आला अतहर अली हाशमी साहब आज हमारे मेहमान हैं। गुफ्तगू का आगाज़ हम हाशमी साहब से करना चाहेंगे। हाशमी साहब, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, वो नुमाइश जिसमें आप शिरकत के लिए तेहरान में तशरीफ़ लाए हैं, इसको आपने कैसा पाया है और ये अपने हदफ में किस हद तक कामयाब है?
देखिए, ये बहुत ही खुशगवार तजर्बा था। मेरे ख्याल दुनिया में इससे पहले इतनी बड़ी सहाफ़ियों का इतना बड़ा इज्तम एक ही छत के नीचे नहीं हुआ और शायद आइंदा भी कहीं और ना हो। 55 ममालिक के लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे थे, जानते थे, पहचानते थे। मैंने जिन ममालिक के नाम सुने हुए थे उनकी हिस्ट्री से वाकिफ था, उन लोगों से मेरी मुलाकात हुई, लाइक बोस्निया हर्ज़ेगोविना है या वियतनाम वगैरह है, इन लोगों से इंटरेक्शन हुआ, तो इस लिहाज से तो ये बड़ी कामयाबी है। लेकिन मेरा ख्याल है इसको मज़ीद कामयाब बनाया जा सकता था अगर एक और बेहतर तरीके से इसको होता तो। लेकिन जो कुछ पैगाम ईरान देना चाह रहा था, मेरा ख्याल है वो तो उसमें कामयाब रहा। मेरा अंदाज़ा ये है कि जैसे अमेरिका ने, आपको पता है, सेंक्शंस वगैरह लगाए भी हैं, कुछ ममालिक रबते मुलकता कर रहे हैं, तो एक पैगाम था कि हम अकेले और तनहा नहीं हैं। 55 ममालिक, तो कम अज़ कम 55 ममालिक के सहाफ़ी तो हमारे साथ हैं, उसमें गैर मुस्लिम कंट्रीज़ भी थी, सारे मुस्लिम ममालिक तो नहीं थे। मेरा ख्याल ये पैगाम तो जहाँ पहुँचना चाहिए था वहाँ पहुँच गया होगा।
जी शमसी साहब, यह पैगाम का जिक्र किया है हाशमी साहब ने, तो इस नुमाइश का पैगाम क्या था?
मेरे ख्याल में अगर दो लफ्ज़ों में मैं बात को कहूँ कि इसका पैगाम ये था कि मगरबी तसल्लुस से आज़ादी कैसे हासिल की जाए। क्योंकि मगरबी मीडिया का जो तसल्लुत है वो इस बुरी तरीके से हावी है तीसरी दुनिया के अखबारात हों चाहे मीडिया हो सब पर, और कोई चीज़ भी हमको साफ शफाफ या बिल्कुल जिसको कहिए आप जिस शक्ल में निकली है उसी शक्ल में हम तक पहुंचे, ऐसा होता नहीं। उसको एक जहरीले कैप्सूल में लपेट कर हम तक पहुंचाया जाता है। सारी दुनिया के साथ यही हो रहा है, और चूंकि तमाम ज़राए इब्लाग को जो मवाद फराहम करने वाली एजेंसियां हैं वो सारी सहूनियों या उनके हमदर्दों के अंडर में हैं, और उन्हीं से, यहां तक अगर आप, आपके पड़ोस में इराक है, इराक की खबर भी आपको मिलती है तो वो APTN और फुला एजेंसी और फुला एजेंसी इस तरीके से होकर मिलेगी। यानी कि जबकि आपका पड़ोसी है, आपके पड़ोसी की खबर, यानी कि मेरे घर के पड़ोस में जो रहता है उसकी खबर मैं बंबई से मंगाऊं जो दिल्ली में रहता है, ये मामला हो गया है। और उससे कुछ ज्यादा ही मसाइल हैं ये। तो इसका जो पैगाम था सबसे पहले कि इस तसल्लुस से आजादी कैसे हासिल की जाए, मगरबी ज़राए इब्लाग ने या मगरबी एजेंसियों ने, ज़राए इब्लाग क्योंकि उन पर भी वही लोग हावी हैं, वो सारी जो खबर रसा एजेंसियां हैं उन्होंने जिंदगी दुभर कर रखी है आम आदमी की, कि उस तक खबर नहीं पहुंचने देते, खबर पर अपने व्यूज को हावी करके भेजते हैं।
जी हाशमी साहब, ये जो नुमाइश हुई है इसमें बहरहाल मरकजियत आलम इस्लाम को, इस्लामी दुनिया को दी गई। इस्लामी दुनिया के अगर ममालिक का शुमार किया जाए तो 57 ममालिक इस्लामी दुनिया में आते हैं। इसके अलावा वो ममालिक जहां मुसलमानों की कसीर आबादी है और जहां मुसलमानों की राय किसी हद तक फैसला कुन होती है, उस मंतके और उस इलाके को भी हम इस्लामी दुनिया में अगर शुमार करें तो गलत नहीं होगा। इस वक्त जो सहाफती हमाहंगी जो ज़रूरी इस्लामी दुनिया में पाई जानी चाहिए उसका कितने फीसद आपको नज़र आ रहा है?
मैं आपके सवाल का जवाब दे, इसमें शकील साहब की बात में कुछ इजाफा करूंगा। यानी जो पैगाम था कि मीडिया, फॉरेन मीडिया का तसल्लुत है, लेकिन कैसे निजात हासिल की जाए ये पैगाम यहाँ पूरी तरह से नहीं मिल सका। ये तो हमको मालूम है कि हमारी अपनी खबरें हमें गैरों से मिल रही होती हैं, लेकिन हम उससे कैसे निजात हासिल करें? हमारे तो हम जितने मुस्लिम ममालिक हैं उनको मिलकर कोई एक रॉयटर टाइप की या ऐसी कोई अपनी एजेंसी बनाए जो सही खबरें दें। अब अगर हमें मालूम है कि हम ये खबर हमें जो मिल रही है ये पूरी तरह सही नहीं है, हम उसको रोकते हैं या कुछ और करते हैं, दीगर अखबार लगा देंगे, एक दौड़ भी चल पड़ी है।
जी।
तो अजीब बात है कि जब बोस्निया में लड़ाई हो रही थी तो हमें जो खबरें थी वो उनसे ही मिल रही थी जो इसके जिम्मेदार थे।
जी।
तो आपका सवाल का दूसरा हिस्सा
जी
क्या था आपका जो अब तक तो
हम आंगी
तो पैदा हुई है और होनी भी चाहिए, यानी मुस्लिम ममालिक में। इवन ये कि जैसे कि आपने कहा कुछ ममालिक ऐसे भी हैं जैसे इथियोपिया या अफ्रीका वगैरह जहाँ मुसलमान ना होने के बराबर हैं, यह है ही नहीं, तो उनसे एक हमांगी तो एक सहाफती हमांगी होती है। बहुत से सहाफियों ने हमारे नंबर लिए, ये सब क्या आइंदा भी हम रबते रखेंगे, ऐसे ही हमने भी। तो हमांगी तो फितरी बात है, जब आप एक छत के नीचे बैठे हैं, एक साथ खा रहे हैं, पी रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, व्यूज एक्सचेंज कर रहे हैं, तो हमांगी तो, और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है मुस्लिम ममालिक के अंदर।
शमसी साहब, ये जो न्यूज़ एजेंसियों या मीडिया का जो तसल्लुत है आलमी ज़राए इब्लाग आम्मा पर सेहूनी हलकों का, ये जितनी मगरबी न्यूज़ एजेंसियां हैं, एक तो एक मसला ये है कि खुद इस्लामी ममालिक भी, मसलन पाकिस्तान अगर ईरान की कोई खबर ले रहा है तो बजाय इसके कि इरना से ले, या हमारी जो दूसरी मेहर या दूसरी न्यूज़ एजेंसियाँ हैं और दूसरे ज़राए हैं उनसे लेने के बजाय मगरबी न्यूज़ एजेंसियों से, या पाकिस्तान की खबर हम रॉयटर्स से या फ्रांस प्रेस से लें, हम पाकिस्तानी ज़राए से भी ले सकते हैं, ये तो अपनी जगह पर। अभी जो हाशमी साहब ने बात की है कि इस्लामी ममालिक की अपनी एक न्यूज़ एजेंसी होनी चाहिए,
जी हाँ, इस पर गुफ्तगू हुई है, वहाँ पर काफ़ी लोगों ने बात रखी, खुद जो आपके इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर हैं और उन्होंने भी ये बात रखी थी कि होना चाहिए एक ऐसी, और इस कॉन्फ्रेंस की जो सबसे बड़ी मतलब तहरीक यहाँ से निकली, अभी कुछ हुआ तो नहीं, तहरीक की शक्ल में ये बात सामने आ रही है कि एजेंसियाँ होना चाहिए इस तरीके की। लेकिन जहाँ तक आपने बात कही कि दूसरों, आप देखिए सिलसिला शुरू हो गया, इंटरनेट ने ये मसला थोड़ा सा हल किया है। मिसाल के तौर पर मेरा अखबार है, उसमें हम ईरान रेडियो के बहुत से फीचर्स नाम के साथ लेते हैं कि भाई ये ईरान रेडियो की खबर है या IRIB की खबर है, तो जो हमको मिल जाती हैं उन ज़राए से हम प्रीफर करते हैं कि आप कैसे बाकायदा आलम इस्लाम का जो हमारा सफ़ा होता है उसके ऊपर अगर हम पाकिस्तान की खबर ले रहे हैं तो हम जंग से ले रहे हैं और या दूसरे अखबार से वहाँ के ले रहे हैं, और उनके शुक्रिया के साथ, ये नहीं कि अलग से करके। तो इस तरीके से हमको मतलब काफी सहूलियतें हो रही हैं और लोगों ने इस बात को समझना शुरू किया है। जितने भी सहाफी हैं, जैसा कि अभी हाशमी साहब ने भी कहा कि वो उस पर नजर रखते हैं और अगर कोई चीज गलत जो भी है तो उसको एडिट कर देते हैं, तो जाहिर बात है कि एक एक ये वो लोग कर सकते हैं कि जिनको एक हिस है इसकी कि इसमें क्या चीज जहरीला मवाद मिलाया गया है। लेकिन बाद वक्त ऐसा होता है कि लोगों को पता ही नहीं है कि किस तरीके से हमको जहरीला मवाद हमारे सामने रखा जा रहा है। मिसाल के तौर पर मैं इराक के सिलसिले में ऐसा करूं कि इराक में जब भी कोई धमाका होगा तो उस धमाके को वो शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट के नाम से लिखेंगे, जैसे कि कोई वहां फसाद की शक्ल हो रही हो, जबकि एक दहशतगर्दी का काम है, दहशतगर्द ने किया है, चाहे वो शिया सुन्नी शिया नेबरहुड में किया या सुन्नी नेबरहुड, तो वो लेकिन चूंकि उनके लड़ाने की एक तहरीक है कि मुसलमानों को मुंतशिर किया जाए, मुसलमानों के बीच निफाक डाला जाए, तो उसको वो हमेशा शिया सुन्नी के पैराए में बयान करते हैं और इस तरीके से बयान करते हैं कि मेरे एक अजीज हैं, उनसे मेरी गुफ्तगु हो रही थी, जब मैंने उनसे कहा कि नहीं इराक में मैं गया हूं और वहां पर ऐसी सूरत हाल नहीं है कि शिया सुन्नी के दरमियान लड़ाई हो रही हो, तो उन्होंने बड़ा ताज्जुब का इजहार किया। उन्होंने कहा नहीं, हमको तो लगता है कि जैसे वहां पर यह हालत होगी कि एक दूसरे के बीच में तलवारें खींची हुई होंगी। तो इस तरीके से जहरों जहनों में जहर भर दिया जाता है कि लोगों को पता नहीं चलता। सहाफी तो समझ सकता है, लेकिन जो आदमी अंग्रेजी अखबार पढ़ रहा है या जो आदमी हिंदी के अखबार पढ़ रहा है उसका क्या हो, उस तक खबर कैसे पहुंचे? क्योंकि उनके पास, हम उर्दू के अखबारों में तो कर सकते हैं ये बात कि हम अपने थोड़ी बहुत तरमीम कर ली और या मुसलमान जराये से ले लिया। इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि तीसरी दुनिया में, सिर्फ हम मुस्लिम वर्ल्ड की बात नहीं करते, क्योंकि मैं इस्लामी दुनिया का रहने वाला नहीं हूं, मैं एक सेकुलर मुल्क का रहने वाला हूं। उस सेकुलर मुल्क में मुसलमानों की काबिले लिहाज तादाद है मौजूद, लेकिन वहां दूसरा आदमी मुसलमानों के बारे में क्या सोच रहा है, एक बड़ी अक्सरियत मुसलमानों के बारे में क्या सोच रही है, वो अखबारात को जो खबरें मिल रही हैं उन तक पहुंचने का जरिया कोई एक ऐसा होना चाहिए कि जिसमें जहरालू मवाद शामिल ना हो खबरों में।
ये हाशमी साहब, ये जो सूरत हाल है, अक्सर हमने बात पाकिस्तानी अखबारात को भी देखा है कि उन्होंने मगरबी न्यूज एजेंसियों की फराहम करदा रिपोर्टें मिनमोहन वैसे ही, ये सिर्फ इजी पिकिंग है या कोई और मसला अंदर?
देखिए, इसमें दो बात है, एक तो इजी पिकिंग है जैसे कि आपने कहा, दूसरी बात एक चटखारे वाली जो आदत होती है ना, माल बेच रहा है तो कुछ ज्यादा चटपटी सी चीजें हो, तो उस कसम की सादा कसम की कोई खबरें शायद लोगों को अट्रैक्ट ना करें, मुतवज्जे ना करें, ईरान इराक की जंग हो गई या कुछ और मामला हो गया, तो इसका अनुसर भी शामिल है कि मीडिया थोड़ा सा जिम्मेदार जरूर है लोगों को मिसगाइड करने के लिए। और जैसे वो भी बात हो रही थी अपनी कोई एजेंसी, मुझे याद आया कि एक इंटरनेशनल इस्लामिक न्यूज एजेंसी है, बेस्ड है सऊदी अरब में जद्दा में, और मैंने जो वहाँ रह कर मालूम किया था कि बहुत से मुस्लिम ममालिक ने उसको फंडिंग किया है, लेकिन जो उनकी खबरें मैं देखता हूँ, कहने को तो वो इंटरनेशनल इस्लामिक न्यूज एजेंसी है जिसको आलम इस्लाम को कवर करना चाहिए था और खुद एक मोतबर इदारा बनना चाहिए था, वो उनकी खबरें ये होती थी कि साहब ऑस्ट्रेलिया में इस्लाम और फला मुल्क में इस्लाम और फला, ये इस कस्म के मुजामिन होते थे, बेकार पैसा ज़ाय हो रहा है। तो इसके ऊपर भी सोच लेना चाहिए लोगों को। बात जो आप कह रहे हैं उसमें दो तरीके होते हैं, एक तो ये कि जो अखबार पिक कर रहा है रॉयटर्स से या दूसरे, वो उसको ऑथेंटिक भी समझ रहा है बाद औकात, और इस पर डिपेंड करता है कि जो बेस पर बैठा हुआ है न्यूज डेस्क के ऊपर वो क्या, उसकी थिंकिंग क्या है, हमारे यहाँ तरीका है खबर आई और उसको पिक करेगा न्यूज एडिटर, उसको सेलेक्ट करेगा कि ये देनी है नहीं देनी है, वो किसी को देगा, सब एडिटर को देगा। अब सब एडिटर में इतनी सलाहियत है या नहीं है, यानी ये खासा लंबा प्रोसेस है, आप तो खैर वाकिफ होंगे इससे, तो इस पे डिपेंड करता है, जिम्मेदारी न्यूज एडिटर पे आती है कि भाई इसके अंदर, और फिर शऊर और आगाही उस बंदे को होनी चाहिए कि भाई क्या चीज़ हमारे खिलाफ है, क्या चीज़ हमारे हक में है, तो ये इसकी कमी है।
शमसी साहब, ये एक अभी एक न्यूज एजेंसी का जो हवाला दिया, न्यूज एजेंसी या मैंने बाज अखबारात को देखा है पाकिस्तान के, मैं किसी अखबार का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैंने देखा है कि अगर कोई खबर बीबीसी में नहीं है या सीएनएन ने वो खबर नहीं दी है तो वो उनके यहाँ नहीं मिलेगी, चाहे आलम इस्लाम से मुताल्लिक कितनी ही बड़ी खबर क्यों ना हो।
ये हमारे यहाँ भी मर्ज है और ये मर्ज काफी बढ़ता पहले से मौजूद है, काफी पुराना मर्ज है ये। और लेकिन आप, मैं आपको अर्ज करूं कि मुस्लिम सहाफियों में फिर भी एक बेदारी आई है, उनके बारे में तो इतना ज्यादा मुतफक्किर होने की जरूरत नहीं है। मसला ये कि एक तो होता है कि मुसलमान की खबरें, इस्लाम की खबरें, मुसलमानों से मुताल्लिक खबरें मुसलमानों तक भेजी जाना और एक दूसरी अकवाम तक भेजा जाना, हमारे पास वो जरिया बिल्कुल निल है कि हम मुसलमानों की जो इमेज दुनिया में प्रोजेक्ट की जा रही है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं और किस तरीके से उनको ये समझाएं कि ये गलत कहा जा रहा है और किस तरीके से छोटी छोटी बातें होती हैं लेकिन एक छोटी सी बात में वो पूरी बात जो है पूरी छवि मस्त कर देते हैं। एक मिसाल के तौर पर मैं करूं एलटीटी श्रीलंका में किस कदर काम करती थी और किस कदर उसने बम धमाके किए, कभी किसी ने उसको किसी मजहब के साथ नहीं जोड़ा, हमेशा का एलटीटी ने बम धमाका किया। लेकिन अगर श्रीलंका में बम धमाका हुआ तो एलटीटी ने किया, कश्मीर में हुआ तो मुस्लिम दहशतगर्दों ने किया। ये जबरदस्त बुनियादी फर्क है जो एक एक लोगों को लगा देते हैं वो कि कश्मीर में हो रहा है तो इस्लामिक दहशतगर्दी है, श्रीलंका में हो रही है तो एलटीटी की दहशतगर्दी है, जबकि दोनों अलहदगी पसंदाना तहरीके हैं। अगर आप देखें तो दोनों का यानी कश्मीर हिंदुस्तान से अलग जो तहरीक चलाते थे वो कश्मीर हिंदुस्तान से अलग होना चाहते थे और वो श्रीलंका से अलग होना चाहते थे, लेकिन उसको एक मजहब के नाम पर लोगों के मवाद उसमें भर देना जहनों में और जहनों को एक तरीके से जहरीला बना देना, वो काम था वेस्टर्न मीडिया का। और जिससे कि हमारा जो बिल्कुल सीधा साधा जो आदमी है, जो आम हिंदुस्तानी, मैं हिंदुस्तानियों की बात करता हूं कि आम हिंदुस्तानी है, उस तक जो बात पहुंचती है वो बहुत ही गलत तरीके से पहुंचती है। और हमारे यहां तो ये काम बड़े पैमाने पर किया गया था दहशतगर्दी के सिलसिले में कि उन्होंने क्या किया कि दहशतगर्द तंजीमों ने मुसलमानों के इलाके में बम फोड़े, अजमेर में हुआ, मालीगांव में हुआ और कई जगह आपको मालूम है, और पकड़े भी सब मुसलमान गए उसमें, और बाद में मालूम हुआ कि करने वाले जो थे ये इसके दूसरे ये संघ परिवार के लोग थे वो सामने आए। तो इतनी गहरी जहां साजिशें चल रही हैं जिस मुल्क में और जिस दुनिया में, वहां पर हमको सोचना ही पड़ेगा कि आखिर हम दूसरों तक अपनी इमेज को कैसे सुधारें या उन तक किस तरह अपनी सही इमेज को पहुंचाएं। हमें सुधारने की बात नहीं, हमें सुधारने के कुछ चाहिए नहीं, हम अपनी सही इमेज को कैसे उन तक पहुंचाएं, क्योंकि हमारी जो इमेज या जो हमारी छवि है वो मस्त करके पेश की जा रही है।
अच्छा हाशमी साहब, पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो इस वक्त मीडिया काफी मजबूत नजर आता है। बाज़ औकात ऐसा नजर आया है कि हुकूमत ने कोई बयान दिया है या हुकूमत के किसी ओहदेदार ने कोई बयान दिया है, उस पर मीडिया ने इतना शोर मचाया है कि वो अपना बयान वापस लेने पर या उसकी किसी न किसी तरह से तौजीह करने पर वो मजबूर हो जाते हैं। ये जो अंदाज है पाकिस्तानी अखबारात का या पाकिस्तान के जो टीवी चैनल्स हैं, ये दाखिली तौर पर तो ये बिल्कुल यानी हुकूमत को झुका देते हैं, निजाम को झुका देते हैं, ये आलमी जो इस्तेबदाद है इसके मुकाबले में यही रुख और यही अंदाज क्यों नहीं अपनाते?
असल में आलमी इस्तेबदाद के बारे में जहां तक अखबारों का ताल्लुक है तो थोड़ा बहुत तो है, लेकिन आलमी इस्तेबदाद को जरा वाजे कर देना चाहिए। अब जैसे आलमी इस्तेबदाद आलम इस्लाम फेस कर रहा है उसके बारे में आर्टिकल्स भी होते हैं, खबरों भी होती हैं, या जैसे अफगानिस्तान में हो रहा है या अमेरिका की बमबारी खुद पाकिस्तान के ऊपर हो रही है तो इसके खिलाफ तो लिखा जा रहा होता है। बाकी आलम इस्तबदाद के बारे में सभी को मालूम है, आज से 100 साल पहले अल्लामा इकबाल भी आलम इस्तबदाद के खिलाफ बोलते रहे और ये कहते रहे कि भाई एक हो जाओ, आज तक हम लोग एक नहीं हुए। इनकी बात को थोड़ा सा बढ़ा के दाखिली मामले में इनके दखल दे रहा हूँ कि वहाँ के एक लीडर ने बड़ा अच्छा जुमला कहा था कि हर मुसलमान दहशतगर्द नहीं है लेकिन हर दहशतगर्द मुसलमान है, इससे आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं।
लेकिन मैं इसे इख्तलाफ करता हूँ, ये उनका जुमला था और मैंने इसके खिलाफ मैंने लिखा,
लेकिन
ये भी इख्तलाफ करने वाली बात है कि जो पाकिस्तान तक ये जुमला पहुंचा ये कितनी जबरदस्त बात है कि अब ये जो अभी हमारे का संघ परिवार के लोग पकड़े गए क्या मुसलमान है ये दहशतगर्द?
तारीफ
में नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ ये आप तक जो एक इमेज पहुंचाई गई है लोगों को वो सारी इमेज खराब करने की बात है। उन्होंने कहा कि हर दहशतगर्द मुसलमान होता है, हमें कहते हैं कि नहीं, जो दहशतगर्द होता है वो मुसलमान होता ही नहीं है, हमारा तो ये मानना है और यही हमारा पैगाम जाना चाहिए। हाँ ये कि मुसलमान के नाम पर जो कर रहा है वो हम उसको मुसलमान माने और उसके अलावा भी जो वही मैं हिंदुस्तान में यही किया गया, उन्होंने पहले ये जो लफ्ज कहे संघ परिवार का एक आदमी ने ये बात कही थी कि हर मुसलमान दहशतगर्द नहीं होता लेकिन न जाने क्या बात है कि हर दहशतगर्द मुसलमान होता है। तो उन्होंने इसका सहारा लेकर मस्जिदों में धमाके किए, उन्हीं के लोगों ने अजमेर की दरगाह में ब्लास्ट किया, उन्हीं के लोगों ने समझौता एक्सप्रेस में ब्लास्ट किया, उन्हीं के लोगों ने मालीगांव में ब्लास्ट किए और उसके बाद जब वो हेमंत करकरे ने उसका पूरा राज पाश किया तो मालूम हुआ कि साहब ये देखिए इनके लोग थे। तो उस वक्त अब कोई हिंदुस्तान में बात नहीं कह सकता कि सारे दहशतगर्द मुसलमान।
ये जो है कि हर मुसलमान दहशतगर्द नहीं है लेकिन हर दहशतगर्द मुसलमान है, आप क्या ये नहीं समझते हैं कि ये आलमी मुहिम
है? मैं तो इसको वो कर रहा था, कंडेम कर रहा था और हमने तो खैर इंडिया के बारे में पढ़ा, हमने इसके खिलाफ लिखा कि ये गलत नहीं है, ये शायद गलत समझे इस बात को कि मैं इसको अप्रिशिएट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैंने जो तारीफ की थी तंजन की एक अच्छा जुमला تو اس طرح سے تھا. اور یہ تو امریکہ اور دیگر جو ایجنسیز ہیں اور دیگر ممالک ہیں ان کا پروپیگنڈا بھی یہی ہے. تو مسلم دہشت گردی جیسا کہ انہوں نے کہا ایسے ہی بم بنانے کے بارے میں تھا کہ یہ اسلامک بم ہے, بھائی کسی نے کرسچن بم اور جیوز بم اور فرینچ بم تو نہیں کہا. اسی طرح سے مسلمانوں کے بارے میں بڑی انہوں نے اچھی وضاحت کی. تو یہ بڑے تنزن کہا تھا
جی,
اور ہم نے اس کو کنڈیم بھی کیا ظاہر ہے, کیونکہ سیدھی سی بات یہ ہے کہ مسلمان انڈیا میں ہوں, پاکستان میں ہوں, ایران میں ہوں یا کہیں ہو, تو وہ ہے نا جیسے اس کا سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام مسلم دنیا کا درد ہر مسلمان کے دل میں ہونا چاہیے, اور صحافیوں کے اوپر یہ بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس درد کو لوگوں کے دلوں تک بھی پہنچائیں اور پیدا کریں. اب انڈیا کے مسلمان حالانکہ وہ وہاں کے ہیں, اپنے آپ کو صحیح طور پہ بجا طور پہ وہیں کے نیشنل سمجھتے ہیں, سمجھنا بھی چاہیے, لیکن اگر ان کے ساتھ کوئی ظلم ہوتا ہے, زیادتی ہوتی ہے, تو تکلیف تو ہمیں بھی ہوتی ہے. بابری مسجد کے ساتھ جو کچھ ہوا اس پہ ہمیں تکلیف تھی, ہم نے اس کے خلاف آرٹیکلس بھی لکھے, اور سب کچھ تفصیلات جو کچھ حقائق تھے اور جو فیصلہ ہوا اس کے بارے میں بھی. باہر کہیں بھی کوئی مارا جاتا ہے مسلمان, چاہے فلسطین میں ہو, کشمیر میں ہو, انڈیا کے کسی علاقے میں ہو, بے اس میں ہو, بمبئی کے قریب جو علاقہ تھا یا علی گڑھ میں سے سعود الہ آباد میں سے, دل تو ہمارا دکھتا ہے. اس کی ایک بنیادی وجہ بھی ہے نا کہ پاکستان میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پورے لنکس انہیں علاقوں سے تھے, انڈیا وغیرہ سے تھے, تو ان کو تڑپ زیادہ ہوتی ہے.
لیکن اب یہی میں عرض کروں کہ جیسے ابھی کیا ہو گیا ہے کہ اب پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے, بم بلاسٹ کا سلسلہ چلا ہوا ہے, وہاں پر بھی ایک زبردست سازش, وہاں پر بھی ایک زبردست سازش آپ دیکھیں گے, عالمی سازش. جب کسی شیعہ جلوس پر حملہ ہوگا تو یہ سنیوں نے کیا ہے, جب کسی صوفی درگاہ پر ہوگا تو یہ وہابیوں نے, سلفیوں نے کیا ہوا ہے. مطلب اب مسلک کا نام جوڑا جاتا ہے, پہلے مذہب کا نام جوڑا جاتا تھا, کیونکہ پاکستان میں مذہب نہیں ہے تو وہاں پر مسلک کا نام جوڑا جائے گا الغرض, اور اس کی ذمہ داری لینے کے لیے بھی وہی تنظیمیں سامنے آئیں گی کہ جن کے اوپر امریکہ یا ان کا ہاتھ ہے برطانیہ کا. وہ ایسی کوئی تنظیم نہیں آئے گی کہ جو مسلمانوں کے کسی ملک کی طرف دار ہو. آپ دیکھیں کہ یہ بھی ایک عجیب واقعہ, جیسے کہ شاویز نے کہا تھا کہ سی آئی اے کا یہ ایجنٹ ہے اسامہ بن لادن, تو اس طریقے کے لوگ پاکستان کے جو حملے کر رہے ہیں وہ سب انہی کا کام کر رہے ہیں, انہی کے لیے کام کر رہے ہیں, انہی کی حمایت کر رہے ہیں ایک طریقے سے, بم دھماکوں کے ذریعے سے ان کے مقاصد کو پورا کر رہے ہیں, لیکن اسلام کو بدنام کرنے کا کام کر رہے ہیں اور اسلامی تنظیموں کا نام جوڑ کر اس کے ساتھ. تو اب جو اس وقت پاکستان کی صورتحال ہے, کراچی کی جو حالت ہے, آپ دیکھیں کہ ٹارگٹ کلنگ کا جو سلسلہ چل رہا ہے, اب ہندوستان میں تو میں کہتا ہوں آج کل فسادات کا سلسلہ رکا ہوا ہے, ہمارے یہاں خدا کا شکر ہے کہ بالکل کافی دنوں سے یہ سلسلہ رک گیا, لیکن کراچی کی جو صورتحال ہے اس وقت اگر آپ اس کو دیکھیں, ٹارگٹ کلنگ کا جو وہاں پر سلسلہ ہے یا جو بم دھماکوں کا سلسلہ ہے, کہ کس طریقے سے مسجدیں ہوں, امام باڑے ہوں, ہندوستان میں بہت بہتر ہے کہ آپ کی مسجد میں جانے سے پہلے تلاشی نہیں ہوتی, لیکن پاکستان میں آپ جائیں گے تو اس طریقے کا ملک بنا دیا ہے کہ ہر جگہ ہر مسجد میں تلاشی ہوگی, ہر درگاہ میں ہوگی تلاشی, ہر اس میں ہوگی. ہندوستان میں ایسا خدا کا شکر ہے کہ ابھی تک ان چیزوں سے, حالانکہ جامع مسجد کے آس پاس ابھی ایک حملہ کرنے کی کوشش کی تھی دہشت گردوں نے اور کچھ سنسنی پھیلائی تھی اس سے, لیکن کچھ خاص نقصان نہیں ہوا تھا, لیکن اس کے باوجود ابھی یہ دن نہیں آئے ہیں کہ ہر مسلمان کی ہر مسجد میں جانے پر تلاشی ہو. بڑی مسجدوں میں میٹل ڈیٹیکٹر لگائے باہر انہوں نے, لیکن یہ ایک امیج خراب کرنے والا جو سلسلہ ہے پورا, یہ کہیں سے گورن ہو رہا ہے. اس کے پیچھے آپ یہ نہ سمجھیے کہ کوئی ہمارے ملک کا ہی کوئی خاص آدمی ہے اس میں, بلکہ یہ ہر جگہ ہے جس کے تار ہندوستان پاکستان میں برابر سے جڑے ہوئے ہیں, اور وہی ایران میں جندلہ کو بھی کام کرواتے ہیں, وہی آپ کے ہاں عراق میں بھی القاعدہ عراق کو بھی, سب گروپ ایک ہی ہے جو مختلف زبانوں میں مختلف نیٹورک کے ذریعے سے کام کر رہا ہے, اور اس کے خلاف ہماری جو پوری صحافتی برادری ہے اس کو بیدار کرنا ہمارا مقصد یہاں پر جو آنے کا ہے وہ یہی ہے. میں کہ جو جتنے بھی لوگ آئے ہیں ان سے یہی گفتگو کرتا ہوں کہ بھائی ہم جو جائیں تو اپنے لوگوں کو, جو جیسے چائنا کے لوگ آئے ہوئے ہیں, چائنا کے لوگ اسلام کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں, ہم ان کو تو پتا ہے اتنی بڑی آبادی ہے, ہم اس میں ابھی تک کامیاب نہیں ہو پا رہے. مسلمانوں کے سلسلے میں کہ مسلمان خود سمجھتا ہے, مسلمان سمجھ رہا ہے کہ ہم کو لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے, مسلمانوں میں یہ فہم پیدا ہوئی کہ ان کو معلوم ہے کہ ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, دہشت گردی سے کنارہ کشی ہر مسلمان اختیار کرتا ہے اور اس کی مذمت کرتا ہے, لیکن دوسرے لوگ ابھی بھی اس امیج سے ہم کو ہٹ نہیں پا رہے ہیں. ہم جو ہے تو ایک چیز اس پوری کانفرنس میں جو نکل کر آئی وہ یہ تو اچھی رہی کہ ہم 55 ملکوں کے صحافیوں سے مل سکے, 200 صحافی تھے تقریباً, کچھ لوگوں سے انٹریکشن بھی ہوا, لیکن سب سے نہیں ہو سکا, زبان کا مسئلہ تھا, کہیں پر گفتگو نہیں بھی ہو سکی. لیکن اگلے سال سے جب یہ ہو تو میں یہ چاہوں گا ایرانی حکومت سے کہ جب اگلے سال سے ہو तो इसमें एक दो तीन सेशन इंटरेक्शन के रखे जाएं और जिनके साथ बाकायदा मुतरजिम हो और जिसमें हर आदमी अपनी राय एक्सप्रेस करे कि हम किस तरीके से दूसरों के दूसरे ममालिक में थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में स्पेशली मुसलमानों की इमेज को बदल सकते हैं, मुसलमानों की सही इमेज पेश कर सकते हैं, बदलने की बात नहीं कहूंगा, सही इमेज पेश कर सके उनकी।
अच्छा, ये मुसलमानों की सही इमेज पेश करने में आप क्या समझते हैं बर सगीर के जो मुस्लिम मीडिया है, उसने अपना रोल अदा किया?
नहीं, रोल अदा करने में कामयाब नहीं रहा। हालांकि जो मैं समझता हूँ कि बुनियादी जिम्मेदारी जो है वो इस सब कॉन्टिनेंट या बर सगीर के साफियों पर ज्यादा आयद होती है, क्योंकि एक अंदाजा है मेरा, हो सकता है गलत हो, कि ज्यादा तड़प जो है ना मुस्लिम दुनिया की वो यहाँ के लोगों को है, सब कॉन्टिनेंट के लोगों को, बाकी शायद अपनी अपनी दुनियाओं में बंद हैं, अरब ममालिक हैं, दूसरे दीगर हैं, तो वो शायद इतने महदूद हैं, लेकिन सब कॉन्टिनेंट का जो मुसलमान है वो पूरे आलम इस्लाम का दर्द अपने अंदर अब से नहीं बहुत पहले से रखता है, वरना खिलाफत ख़त्म हो रही तुर्की में, उसे क्या गरज थी मूवमेंट चलाने की। तो उससे अंदाज़ा होता है कि हम लोग सब कॉन्टिनेंट के मुसलमान हैं, हम लोगों के ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है आलम इस्लाम को आगाही देने की और उनको मुत्तहिद और एकजहत करने की। ये वहाँ बात कर रहे थे पाकिस्तान में मसाजिद की, तो मुझे अफसोस है, लेकिन हमने इसको नुमाया किया, हमने तस्वीर शाई की इंडिया की, जामा मस्जिद दिल्ली की, ईदगाह की नमाज हो रही, और फिर इधर पाकिस्तान की शाई की कि आर्मी खड़ी हुई है, फोर्स खड़ी है, जस्ट टू कंपेयर। तो ये तो हमारे यहाँ भी इस बात का एहसास है, और बिल्कुल सही कह रहे हैं ये कि ये हुआ और हमने इसको नुमाया किया, तस्वीर शाई करके देखो, एक वो इंडिया है, सेकुलर मुल्क है, वहाँ पर ये आज़ादी है और हमारे यहाँ ये हो रहा है, तो ये तो ऐसी हुआ नहीं है, प्रॉब्लम है और अफसोसनाक है
जी। ये आलम इस्लाम की इमेज का जहाँ तक सवाल है, ये तो एक आलमी साजिश है और एक आलमी सतह पर कोशिश ये की जाती है कि इस्लाम और मुसलमानों की छवि बिगाड़ी जाए। तो आपने अपने यहाँ के मीडिया को कहाँ पाया है इस सिलसिले में?
हमारा मीडिया जो है वो काफी हद तक, मैं मानता हूँ कि हिंदुस्तान का मीडिया जो है वो बहुत हद तक सेकुलर है, लेकिन उसके पास जरिए जो खबर रसानी के हैं, जो उस तक खबर पहुंचाते हैं, वो वही हैं जो सारे लोगों के पास हैं। तो हमारा मीडिया, हमारे मीडिया में भी शरारती अनासिर हैं, ये बात नहीं, मैं आपसे कहूंगा कि वहां पर भी एक ग्रोह है कि जो मुसलमानों की इमेज को खराब करना या मुस्लिम मसाइल को हमेशा सामने रखना चाहता है। जैसे कि तमाम मुसलमानों में अगर एक लड़की ने किसी लड़के को तलाक दे दिए तो मार मुसीबत मची रहेगी, दिन भर उसी पर गुफ्तगु होती रहेगी, तो ये सिलसिले वहां भी जारी हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो दूसरे महाजों पर, मगर वहां पर सारे जर्नलिस्ट ऐसे नहीं, खास बिलखसूस अखबारों का रवैया मुसलमानों के तई ऐसा नहीं है, अंग्रेजी अखबारों का या इंग्लिश प्रेस जो है और हिंदी प्रेस जो है उसमें थोड़े देना पड़े, लेकिन बाकी सही है, सही लिखते हैं। जैसे खुद हमारा अखबार है, हमारे अखबार में सहारा जो हिंदी का अखबार है वो सही, और उससे जो हमारे मीडिया चैनल्स हैं उनके भी ठीक है रवैया, लेकिन कहीं कहीं पर है कि मुसलमानों के खिलाफ वो एक बनाने की कोशिश करते हैं कि एक बिल्कुल स्टीरियोटाइप इमेज बना देना चाहते हैं कि इनके यहाँ ये होता है, इनके यहाँ ये होता है, इनके यहाँ, तो वो साजिश में वो भी बेचारे शामिल है, कुछ मजबूरन शामिल है, कुछ साजिश के तौर पर शामिल है, लेकिन कुल मिलाकर हिंदुस्तान में इतनी खराब सूरत हाल नहीं है कि मुसलमानों के बारे में लोगों को बहुत ज्यादा गलतफहमी हो, क्योंकि उसकी वजह यह कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में इंट्रैक्शन है काफी, मुसलमानों को भी अक्सर हिंदुओं के जलसे में बोलते हैं, एक दूसरे की जिंदगी में झांकते भी हैं, वो जब देखते हैं कि हमारा पड़ोसी मुसलमान रह रहा है इस तरीके से, मिसाल के तौर पर मैं दिल्ली में जहां रहता हूं, मेरे मालिक मकान हिंदू हैं, वो लोग पहले मैं दिल्ली में काफी परेशान हुआ, मुझको मकान नहीं मिल रहा था मुसलमान होने की वजह से, लेकिन उस आदमी ने मुझको मकान दिया और आज तक वो कहता है कि ऐसा अच्छा हमारा दोनों रब बना हुआ है, क्यों कहता है जो इमेज हमारे दिमाग में थी मुसलमानों की वो खत्म हो गई एकदम आपके साथ, क्योंकि बर्ताव से फर्क पड़ता है, तो वो तो जाती तौर पर हो गया, लेकिन जहां तक मीडिया का मसला है, मीडिया की मजबूरी वही है कि उसको जब तक हम कैटर नहीं करेंगे, जब तक मीडिया को कैटर करने के लिए इस्लामी तंजीमें नहीं होंगी, इस्लामी भी क्या मैं कहूं, सेकुलर तंजीमें हों जो सही बात कहें, जो झूठ कुछ ना कहें, बस एक ऐसी तंजीमों की जरूरत है कि जो झूठ ना कहें और कोई लेबल ना लगाए उस चीज के ऊपर, जो जिस तरीके से है भाई, हमारे क्या टेलीविजन जो सहाफत का बुनियादी उसूल है उसका पहला बुनियादी उसूल यही है कि डू नॉट मिक्स योर व्यूज इन द न्यूज, इट्स ए क्राइम, तो ये जुर्म है एक तरीके से अपना अपने व्यूज को न्यूज में मिलाना, है ना, तो हम लेकिन उसके बावजूद हर आदमी ये जुर्म करता है और हर जो बिल्कुल जायज नहीं है, तो बहरहाल कुछ तो मजबूरियों में कर रहे हैं और कुछ वाकई तौर पर परेशान है कि उनके पास कोई जरिया नहीं हो, या तो वो खबर को ब्लॉक कर दें, खबर देने। लेकिन उर्दू खबर, उर्दू अखबारों में काफी तब्दीली आई, मैं आपसे अर्ज करूंगा, और उर्दू अखबार काफी बदल गए हैं, खास करके हिंदुस्तान के।
ये अभी जो उसूल बताया है सहाफत का, ये क्या बगैर जाविये की जो खबर है, जो रिपोर्ट है, मिनवान जैसी है वैसे ही अपना कोई नजरिया शामिल किए बगैर आज की दुनिया में पेश की जा रही है?
नहीं, पेश की जा रही है। असल में इसमें दो चीजें हैं, एक तो फुहड़पन से अपने व्यूज शामिल कर दिए जाते हैं जिसका अंदाजा होता है, और एक जरा महारत से पेश किए जाते हैं। दो बातें इसके अंदर, दो चीजें। एक तो अगर मैं समझता हूँ कि खबर जो है ये इस्लाम या पाकिस्तान या उम्मत मुस्लिमा के खिलाफ है, उसमें फिर मैं थोड़ा सा अपना कहीं ना कहीं वो तो लगाऊंगा ना व्यू, ये तो आप इसको पॉजिटिव कह लीजिए। और बात होते हैं नेगेटिव, अगर खबर आ रही है किसी हिंदू लीडर के बारे में या किसी और उसके बारे में जिसको मैं समझता हूँ कि भाई ये मुखालिफिन में से है या कुछ और है, हम उसमें उसका तड़का लगा देंगे। अगर महारत है तो पकड़ना मुश्किल होता है, लेकिन आवाम तक वो मैसेज लाशौरी तौर पर पहुँचता है और ये बड़ी खतरनाक चीज़ है।
तो ये शमसी साहब, ये चीज़ जो है ये तो न सिर्फ ये कि कहीं नजर नहीं आ रही है, बल्कि शायद कहीं जो है वो इस पर अमल मुमकिन भी ना हो बाज़ जगहों पर।
जी हाँ, ज़ाहिर बात है कि इस पर कैसे अमल होगा, मैं जानता हूँ कि इस पर अमल नहीं हो सकता, लेकिन देखिए न्यूज़ को एक एंगल देना अलग बात होती है, और न्यूज में अपने व्यूज को शामिल कर देना बिल्कुल अलग चीज हो जाती है। तो न्यूज को एंगल देने के नाम पर लोग अपने व्यूज उसमें मिक्स कर देते हैं। एंगल तो हर आदमी देता है, जब हम खबर को बनाते हैं तो अपने उसको एक झुकाव उसका होता है किसी ने कहता। तो न्यूज एंगल और व्यूज को मिलाना दो अलग अलग चीजें हैं, मगर ये लोग इतनी महारत से करते हैं जो हमारा वेस्टर्न मीडिया है कि हम समझ ही नहीं पाते कि ये क्या हो रहा है या किस तरीके की ये हमको क्या खिला दे रहे हैं, क्या पिला दे रहे हैं, हमें समझ नहीं आता। हम तो उसको शीरीन समझ के खा रहे होते हैं और वो जो है जहर हलाल होता है उसके अंदर।
जी हाशमी साहब, वक्त हमारे पास कम रह गया है, एक मिनट का वक्त।
जी,
ये इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के इस्तेहकाम के लिए सहाफी बरादरी क्या रोल अदा कर सकती है, क्या किया है उसने अब तक?
सहाफी बरादरी ने किया तो कुछ भी नहीं है, देखिए फ्रेंकली मैं समझता हूँ कोई बड़ा काम नहीं किया इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के लिए, लेकिन इसके ऊपर बहुत बड़ी, जैसे मैंने कहा था कि इसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि ये काम करे। उसकी वजह यह है कि हम लोग भी, जितने भी सहाफी बरादरी है, वो भी मुख्तलिफ तबकात में ज़हनी और फिक्री तौर पर बटे हुए हैं, तो इसकी वजह से, लेकिन ये ऐसा होना नहीं चाहिए। अब जैसे ये कॉन्फ्रेंस हुई है या यहाँ पे, और इससे थोड़ा सा जहन साफ होगा, इस कस्म के और दीगर ममालिक में भी यह इंटरेक्शन होता रहना चाहिए, यहाँ के लोग वहाँ जाएँ, वहाँ के लोग यहाँ जाएँ, तो इससे बात आगे बढ़ेगी, जहन साफ होंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया आशमी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया,
शुक्रिया
जहमत की आपने। नाजरीन, आपने दोनों सीनियर तजिया निगारों के ख्याल मुलाहिजा फरमाए। बहरहाल ईरान में जो नुमाइश सहाफियों की, न्यूज एजेंसियों की और अखबारात और जराइद से वाबस्ता अफराद की हो रही है, उसका एक फायदा ये जरूर है कि इससे कुर्बत बढ़ेगी और मुमकिन है कि इससे जज्बा ये पैदा हो कि हम जो रिपोर्टें और खबरें मगरबी मीडिया से लेते हैं, मगरबी जरा इब्लाग और न्यूज एजेंसियों से लेते हैं, उसमें उस सिलसिले में हम कम से कम अपनी हद तक आज़ाद हों और एक दूसरे से न्यूज और रिपोर्टें हासिल करें। इसी के साथ अंदाज़े जहां अपने अख्ताम को पहुंचता है, हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, खुदा हाफिज़। शुक्रिया।